असौ नासा वंशस्तु हि न गिरी वंशध्वजपटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निःश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः जिसके भीतर है शीतल निश्वास जनित मुक्ता सविशेष त्यों समृद्धि से जिनके मुक्ता मणिधारी है बहि प्रदेश हे हिमगिरिवर वंश पता के वह यह नासा वंश त्वदीय हम सब दीन जनों को संतत समुचित फल सुफल कमनीय
हे तुहिनगिरी अर्थात हिमाचल के वंश की ध्वजा की पताके तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित फल का देने वाला हो अर्थात उस पर हमारे लिए उचित फल लगे क्योंकि उसके भीतर तेरे अति शीतल नासों से मोती बन रहे हैं और उनकी बाएं नथने में इतनी समृद्धि है कि एक मुक्ता मणि बाहर भी दिखा रहा है यहां नथ के मोती से अभिप्राय है जो बाएं नाक में पहनी जाती है वंश जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है बांस और कुल तो हिमाचल पर लगे हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाए तो उसकी पताका के सदृश भगवती की उपमा है दूसरे अर्थ में भगवती को हिमालय के कुल की ध्वज पताका के समान बताया गया है बांस में फल नहीं लगते परंतु उसके अंदर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती है मुक्ता शब्द भी द्रव्यवाचक ही है मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं तो बांस में मोती होते हैं और कुल में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं हिमगिरी कन्या का निश्वास भी हिमवत शीतल होना चाहिए जिसके स्पर्श से तुरंत ओस कण जमकर मुक्ता मणियों के सदृश बन जाते हैं शायद इसीलिए चंद्र अथवा ईड़ा नाड़ी के वाम नासापुट से जिस पर नथनी पहनी जाती है टपकने वाले जल कण जमकर मोती बन गए हैं जो नथ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं सौंदर्य लहरी के 61वें श्लोक में शंकर भगवतपाद प्रार्थना करते हैं कि तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिए उचित फल लगे और उसकी समृद्धि भी हो परंतु जैसे बांस में फल नहीं लगते और उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है उसी प्रकार भगवती की नासिकावत श्रेष्ठ कुल में अर्थात भगवती के उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ति होती है जिसका उचित फल मुक्ति है फल का अर्थ कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है शंकर भगवतपाद तो एक सन्यासी होने के नाते त्यक्त काम थे जो दारैषणा वित्तैषणा लोकैषणा सभी तरह की ऐषणाओं से यानी इच्छाओं से मुक्त थे उनको उचित फल की इच्छा परोपकार और संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त और भला क्या हो सकती थी वो तो स्वयं नासिका के बाहर लगे हुए नथ के मोती के सदृश एक मुक्त पुरुष थे इसलिए उनकी प्रार्थना का भाव यही था कि भगवती की उपासक परंपरा में सदा जीवन मुक्तों की समृद्धि होती रहे हिंदी की एक उक्ति है कि केला बिच्छू बांस अपने फले नाश अर्थात केला बिच्छू और बांस को फल लगने से वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं इसीलिए भगवती के नासा वंश में यहां फल न लगाकर उनके भीतर मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है जिनकी सदा समृद्धि होती रहती है और वह वंश अनादि अनंत नित्य परंपरा वाला होता है। नासा वंशह का अर्थ नासोपम वंशह भी किया जा सकता है। कहा भी जाता है किसी मनुष्य की यश श्लाघा करते समय कि वो अपने कुल जाति वंश अथवा देश की नाक है। इसी प्रकार भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है। ऐसा कहने से भगवती के उपासकों की सर्वोपरि गणना समझी जानी चाहिए। जिनकी वंशावली में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि होती रहती है। ओ हिमसुते, द मोस्ट रेवर्ड इन द हिमालयन किंगडम, योर बैम्बू लाइक नोज मे क्विकली रिवॉर्ड आवर डिजायर्स एंड कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन अस। पर्ल्स formed within your nose are pushed while you breathe out through your left nostril and adorn your nose as a nose ring. This verse is purely a poetic visualization of Parashakti by Shankaracharya. He has compared her nose to a bamboo stick, and this comparison is drawn due to several factors. It is believed that raindrops falling on a bamboo become pearls, and when this bamboo stick is blown, it is said that the pearls fall down from the other end. It is also conveyed that her nose becomes broader towards the end like a bamboo shoot. So whether it is a bamboo shoot or an oyster, pearl is always formed inside, invisible to the naked eyes, emphasizing the fact that she should be realized within the body. Flutes are made out of bamboo shoots, and they are capable of producing cool, pleasant melodies. Maybe that is why Shankaracharya has chosen bamboo as an example. Moreover, bamboo trees do not produce fruits, and contextually, fruits mean material desires. So just like a bamboo tree, Shankaracharya had no material desires, and because of this, she literally poured her grace on him. It's a common belief that material desires always pull down spiritual aspirations. We can also compare it to Nadi Shodhan Kriya. So there are two subtle nadis through which inhalations and exhalations happen. One is known as Ida, the Chandra Nadi left nostril, and the other one is known as Pingala, the Surya Nadi or the right nostril. So these two nadis keep the body temperature constant, irrespective of the climate. Pingala Nadi belongs to the sun and makes the body to warm up and represents Shiva, while Ida Nadi belongs to the moon and cools down the body and represents Parashakti. So by referring to Chandra Nadi here, probably Shankaracharya could be referring to liberation, as Chandra Nadi represents her and Surya Nadi refers to Shiva. So when Parashakti exhales, the air that comes out is cool, and as a result of this, pearls are formed inside her nostrils, which fall down due to the force of air breathed out. And these pearls adore her nose externally, forming a nose ring. In this 61st verse of Saundarya Lahari, Bhagavad Pad Shankaracharya establishes her supremacy in her kingdom by drawing a comparison of her to the national flag. Her kingdom is Mount Himalayas, where Meru is situated. Meru means mountain. So she lives with her consort on the top of Mount Himalayas, which is known as Mount Kailash, the supreme seat of Parashakti and her consort Shiva. और अब 9 बार इस श्लोक की फिर आवृत्ति करेंगे और आज का जप संपन्न करेंगे। असौ नासा वंशस्तु हिन गिरि वंशध्वज पटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम्।
शिशिर तर निश्वास घटता है समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वज पटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरि वंशध्वजपटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निःश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटि त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हेन गिरिवंश ध्वज पटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हिन गिरिवंश ध्वजपटि त्वदीयो निर्दीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ गौरये